तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा अभी। सो आज की तारीख है 4 सितंबर, रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं। थोड़ा सा लेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पॉडकास्ट एज अ पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड, जब मैं ऑफिशियली एक कहानी जो मेरे काफ़ी दिल के करीब है, दिल के करीब इन द सेंस मुझे मिस्ट्री कहानियों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो मैं फॉलो करते रहता हूँ सारी चीज़ें। सो ये एक ऐसी कहानी है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं तकरीबन 1 या 2 दिन लगातार इस कहानी के पीछे मैंने रिसर्च करी है सारी चीज़ों से जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन। सो जितने भी इसके ऊपर वीडियोस बने हैं, जितने भी लोगों का इसके ऊपर बयान आया है, उन सब पे मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये कहानी का एक मैंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी रात के, जैसे मैंने आपको बताया, 12:30 बजे हैं, तो ये कहानी जो, ये जो वक्त होता है, ये कहानियों का समय होता है, क्योंकि बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी तो मैं भी, हम भाई बहन दादी नानी के साथ, मतलब उनको कहानी सुनाने के लिए कि हम मजबूर करते थे कि हम हमको कहानी सुनाइए, हमको कहानी सुनाइए, हमें नींद नहीं आ रही, आप हमें बताइए। हम परी की कहानी सुनाने करती थी मेरी दादी, मुझे अभी भी याद है, नानी। और कभी हमारी इच्छा होती थी तो मुझे तो काफ़ी डर लगता था भूत प्रेतों से, तो मेरी जो बहन है वो, उन्हें इंसिस्ट किया करती, तो कभी कभी वो हमें भूत प्रेतों की भी कहानी सुनाया करती। तो हालाँकि जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो कहानी है बेसिकली ये एक कहानी ना होकर, एक कहानी ना होकर इसे मैं कहूँगा कि ये एक रहस्यमय घटना है जो सच में घटित हुई है। इसके प्रमाण, इसके जो प्रूफ्स हैं, वो आप ऑनलाइन या फिर अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इजी अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे। तो दरअसल ये कहानी यहाँ इंडिया की ना होकर, ये कहानी यहाँ से हज़ारों मील दूर अमेरिका के, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ हॉलीवुड एक ऐसी जगह है, फिल्मों के लिए काफ़ी बेहतर जगह मानी जाती है, और आज से कुछ सालों पहले ही, कुछ 90 या उससे पहले दशक में काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई गई थी हॉलीवुड में, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत सारी ऐसी फिल्में और बहुत सारे ऐसे सुपर हीरोज़ वगैरह की जो कहानी है, जैसे कि बैटमैन हम देखें तो बैटमैन काफ़ी पहले से चलते आ रहा है, तकरीबन 1970 या उससे पहले भी, और काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं हॉलीवुड की। सो जो कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है द कर्स ऑफ अतुक। जी हाँ, द कर्स ऑफ अतुक, शायद नाम सुनने में थोड़ा सा आपको एक दिमाग में ये आया होगा कि मे बी ये किसी भूत प्रेत की कहानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अतुक एक कोई आदमी ना होकर, कोई ये इंसान ना होकर, ये एक जगह का नाम है। जी हाँ, अतुक एक प्लेस है, प्लेस इन द सेंस एक ये आइलैंड है। आप रशिया और अगर अमेरिका के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखें, जनरली क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि रशिया अमेरिका से काफ़ी दूर है, तो काफ़ी दूर नहीं है बाबू, काफ़ी दूर अमेरिका और रशिया का, आप अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद थोड़े से दूर होंगे, लेकिन जनरली जो रशिया और अमेरिका का जो डिस्टेंस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो कुछ 25 किलोमीटर या उससे भी कम है, बिकॉज रशिया का भी जो पार्ट है वो अलास्का से मिल, मतलब ज़्यादा 20 या 25 किलोमीटर का ही वो डिस्टेंस है, वो उसके बाद अलास्का चालू हो जाता है। सो जैसे कि आपको पता है कि अलास्का पहले रशिया के पास था, फिर उन्होंने यूएस को भेज दिया, और फिर अभी यूएस का जो है वो अभिन्न भाग है। तो ये जो कहानी है अतुक, ये जो एक आइलैंड है उसके ऊपर एक पहाड़, पहाड़ की चोटी का नाम अतुक, और कहानी जुड़ती है कनाडा से। कहानी शुरू होती है कनाडा के एक फिल्म डायरेक्टर से, कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर, मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। अब क्योंकि कनाडा में एक जगह है बफिन आइलैंड, काफ़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ियों से लैस, सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी मनमोहक दृश्य वहाँ पर। तो बफिन आइलैंड में कोई रीजनल जो सॉन्ग है उनका वहाँ का, जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, साउथ ईस्ट वेस्ट, आप नॉर्थ में जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के रीजनल म्यूज़िक या सॉन्ग मिलेंगे। सो जनरली वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये जो जिस रीजनल सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ बफिन आइलैंड से, ये एक पहाड़ियों पे एक गीत के अंदर एक कथा है, मतलब ये जो गीत है जो सॉन्ग है उसके अंदर एक स्टोरी है, ये जो गीत है वो सारा दर्शाता है उस स्टोरी को, तो आप बेहतर समझ पाए इसलिए मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ कि शॉर्ट में। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक खूबसूरत औरत एक मनमोहक दृश्य देखने वहाँ आती है, और वहीं पे जो जो नेटिव जो लोग रहते हैं उनमें से एक जो जवान बंदा होता है वो उसे देखकर आकर्षित हो जाता है, उसे प्यार हो जाता है, दिल ले बैठता है। सो मोहब्बत परवान चढ़ती हैं, और जहाँ पर भी वो जो लड़की है वो घूमने जाती है वहीं पर ये बंदा उसके पीछे जाता है, उसे स्टॉक करता है, जिसे हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं आजकल के बोल चलन में, ट्रेंडिंग है काफ़ी ये नाम। तो वो उसके पीछे जाता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, उसको देखता है, लेकिन बात नहीं बनती। तो कुछ दिनों बाद जैसे कि हर एक मुसाफिर का एक अंत होता है कि अगर वो वहाँ पे घूमने आया तो वो एक दिन लौटेगा ही, उसके घर उसे लौट नहीं होगा, ऐसे ही वो अंत आता है। लड़की जो है वो वापस जाने के लिए लगती जहाँ से वो आई थी, लेकिन ये देखकर जो बंदा है उसे काफ़ी दुख होता है पहुंचकर, मतलब वो जब देखता है कि वो वापस जा रही हो रही है यहाँ पर, इतना दूर कुछ नहीं कर पाएगा, वो लड़की को कैसे मिलेगा, उसे कैसे ढूंढ पाएगा, तो उसे कोई ऑप्शन नहीं दिखता उसके सामने। तो वो ऐसे ही हिम्मत करके वो उस प्लेन में चढ़ जाता है, वो मैनेज करता है कैसे उस प्लेन में वो एंट्री ले लेता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि प्लेन वगैरह में ये सब इसमें काफ़ी कुछ ऐसे एक लूप होल्स रहते हैं जहाँ पर एक शख्स बैठने की जगह होती है, मैनेज होती है, जो हमें पता है। सो माइट बी उस वो मैनेज करके वो पहुँच जाता है उस जगह जहाँ से वो लड़की आई थी। अब शुरू होती है यहाँ पर उसे ढूंढने की दास्तान, लड़की को खोजने की स्टोरी, कि वो अब पहुँच तो गया अब, लेकिन करेगा कैसे वहाँ पर, वो किसी न जान न पहचान। तो जो बंदा है वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, स्ट्रगल करता है और लड़की को खोजने की कोशिश करता है। उस दरमियान वो काफ़ी जगह मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, ये वो। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जो बंदा है वो एक ऐसे ही एक कोई अमीर शख्स है बीच में, जब वो ये वक्त जब गुजरता था बीच में वो किसी अमीर शख्स की मदद करता है, उसकी जान बचाता है एक्चुअली। सो ऐसे ही कुछ करके वो धीरे 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 वक्त बीतते 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 खुद एक अमीर शख्स, एक रईस शख्स बन जाता है वहाँ का। तो ये है उसकी कहानी, और इसके बाद की जो कहानी है इसमें भी कुछ एक ऐड है एक छोटा सा। तो ये ओवरऑल यही एक कहानी का स्ट्रक्चर है, उस यही सब उस गीत में है। तो ये जो गीत है, तो इस कहानी से जो जो कैनेडियन डायरेक्टर जिनकी मैं बात करता हूँ, अब हम लौट आते हैं कैनेडा में, जो कैनेडियन डायरेक्टरी में बात करता हूँ, उनके कानों पे ये गीत पड़ा था, उनके वो चाहते थे, वो उनको समझ में आ गया था कि ये गीत व्हाट इज़ दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट। तो उनको वो गीत समझ में, उनको कहानी जो है वो काफ़ी पसंद आई, उन्होंने फैसला किया कि नहीं इस पे तो एक फिल्म बनानी चाहिए, तो फिल्म योग्य है। तो जो कैनेडियन डायरेक्टर हैं वो लग जाते हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे, वो इस जो ओरिजिनल म्यूज़िक के अंदर की जो कहानी है उसे वो बड़े पर्दे पे दिखाना चाहते थे। तो ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉन्ग है काफ़ी, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मनूस है या फिर कुछ यहाँ की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं इस गीत के साथ में, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। तो मैं बार बार मैं समझाऊँगा, जैसे मैं आगे आपको बताते जाऊँगा कुछ चीज़ें, आपको क्लियर होती जाएगी कि मैं ये बार बार शब्द क्यों कह रहा हूँ कि ये गीत वगैरह कोई मनूस नहीं है, ठीक है। तो आगे ही बढ़ते, तो जैसे वो कैनेडियन जो डायरेक्टर है वो चाहते हैं कि इसकी फिल्म बनाए, वो प्रोडक्शन हाउस के पास जाते हैं यूनाइटेड स्टेट बेस में। तो वहाँ पर उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है, उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस से उनकी मीटिंग तय हो जाती है, जिसका नाम है यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस, US बेस्ड। डायरेक्टर जाते हैं, उनको अपना प्रोजेक्ट बताते हैं और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है ये प्रोजेक्ट, वो सुनते हैं सारी कहानी समझते हैं, लेकिन उस पर भी वो अभी फ़िलहाल काफ़ी सारा काम करना चाहते हैं। तो इस बार वो चाहते हैं कि कोई ऐसा राइटर हो, कोई ऐसा राइटर हो जो इस गीत को, इस गीत के अंदर जो कहानी है उसको वो बड़े पर्दे पे उस तरीके से लेके आए, उस तरीके से लेके आए ताकि वो ऑडियंस को भी पसंद आए और इनको खुद, जब ये खुद बना रहे हों ये फिल्म, इनको भी बहुत पसंद आए। तो ऐसे ही वो राइटर की खोज चालू हो जाती है। यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन और द कैनेडियन डायरेक्टर चालू करते हैं अपनी खोज इस सॉन्ग के माध्यम से लिखी गई, सुनी गई, माफ़ कीजिए, का कहानी का जो राइटर है उसे ढूंढने। तो समय बीतने के बाद इनको एक राइटर मिलता है जो काफ़ी फेमस राइटर हुआ करते थे उस दौर में, जिनका नाम है टॉट कैरल। एक फेमस राइटर थे यूएस में, काफ़ी अच्छा काम कर चुके थे ऑलरेडी, और लोगों को इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी, प्रोडक्शन हाउस और जो डायरेक्टर है उनको। सो वो पहले इनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ऐसा ऐसा ये स्टोरी है, इसको ऐसा आपको पर्दे पे दिखाना है, हम चाहते हैं कि हम इसको एक फिल्म बनाएं। तो जो राइटर है टॉट कैरल, वो इस प्रोजेक्ट को, इस फिल्म को लिखने के लिए मान जाते हैं। सो जब ये सारा जब प्रोसेस शुरू हुआ था, तब दौर था 1970s का, और अभी 1979 तक ये कहानी जो है वो लिखी जा चुकी थी। इस कहानी का जो जितने भी स्टोरीज़, जो जितने भी पात्र हैं उन सबको, पात्र इन द सेंस कास्टिंग, जो एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर जो भी थे, इसको वो लिख चुके थे इसको, बस अभी कास्टिंग बाकी थी, बस अभी हीरो को चुनना था, कलाकारों को चुनना था, यही उनका एक काम बाकी था। सो 1979 में वो ढूंढने जाते एक शख्स के जो इस फिल्म को बनाए, इस फिल्म को, माफ़ कीजिए, इस फिल्म को एक्सेप्ट करे, इसको हीरो जो है उसका रोल अदा करे। तो क्योंकि अब यहाँ पर एक थोड़ी सी तकलीफ थी कि जो ये जो फिल्म, ये जो गाना है, इसका जो पात्र है, ये सारा जो पॉइंट ऑफ, जो फोकस कर रहा था, वो कर रहा था आप रशिया, या रशिया के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया अलास्का, और उसी से मिलते जुलते जो आइलैंड है उसके पास थोड़े बहुत दूर पे, उस चीज़ पे ये फोकस था। तो ये चाहते थे, डायरेक्टर चाहते थे कि ये वहाँ ना, उसका जो नेटिव जो लोकेशन है वो वहाँ ना शूट करके ये शूट हो अमेरिका में, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस था वो भी अमेरिका का ही था, और काफ़ी सारे उनको जो एक्टर वगैरह जो ढूंढने थे वो मुमकिन था अमेरिका में, हॉलीवुड में, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप था वहाँ पर, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को प्रेफरेंस में लेने का। तो तय होता है कि जो लोकेशन जो है वो कैनेडा और अलास्का ना रहे, वो रहे अमेरिका, यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है आज की कहानी का अंत, फिलहाल नॉट कहानी का अंत, एक्चुअली ये एपिसोड का अंत है, क्योंकि आज जो पहला एपिसोड है जो मैंने आपको बताया, द कर्स ऑफ अतुक, अब इसके बाद ये जो कहानी अभी तक आपने सुनी, इसके बाद के जो पात्र हैं, जो एक्टर हैं, जो सपोर्टिव एक्टर हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है, क्या ऐसी रहस्यमय घटना हो जाती है कि इसे जो है एक मनहूस कहानी का दर्जा दिया गया, क्या ऐसे रीजंस है, क्या ऐसी घटनाएं हुई इन लोगों के साथ में, प्रोडक्शन हाउस के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, इवन दो जो भी एक्टर इस कहानी के कहानी को, या फिर उसका लीड जो एक्टर है वो इसे जब भी हाँ कहता था इस कहानी को देखकर, या मान जाता था इस कहानी में एक्टिंग करने के लिए एज अ लीड रोल, क्यों उसकी मौत हो जाती थी। जी हाँ, इसलिए ये जो कहानी है ये काफ़ी काफ़ी मेरे ख्याल से एक रहस्यमय तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, इस वजह से ये जो कहानी है ये मेरे दिल के, जहन के काफ़ी करीब है। सो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक ये एपिसोड सुनने में काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद ऐसी ही है मेरी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया ये मेरा पहला एपिसोड है, मैंने इसके पहले कभी ऑन प्लेटफॉर्म मैंने कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया इसके पहले, सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग बियॉन्ड माई लिमिट्स, क्योंकि मुझे आदत है मैं दोस्तों वगैरह को कहानी सुनाता हूँ, सो इस वजह से। सो आशा करता हूँ आपको अभी तक ये पसंद आया होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में द कर्स ऑफ अतुक, जहाँ दिलचस्प होगा ये जानना कि क्या कुछ ऐसी घटनाएं होंगी इस फिल्म के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गाइस, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 4 सितंबर, दोपहर गुजर चुकी है, लगभग 3:30-4 बज रहे हैं अभी, और मैं ये जो नेक्स्ट एपिसोड है वो रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। सो हमारा जो सीरीज है उसका नाम है द कर्स ऑफ अतुक। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया इसके प्लॉटिंग के बारे में, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स बताया था एक्चुअली, देखा जाए कि कहाँ से ये चालू हुआ, ये सिलसिला कैसा और ये कैसा होने वाला था, वो जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसके ऊपर का वो स्टोरी है, और स्टोरी के बाद एक कैनेडियन एक्टर, और फिर चालू होती एक फिल्म की कहानी, राइटर की खोज। आई होप आपने पिछला एपिसोड सुना होगा, तो इसी विश्वास के साथ मैं आपको सुनाने जाता हूँ इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जो कि है एपिसोड नंबर 2, और इस एपिसोड को मैंने नाम दिया है एक्टर्स। जी हाँ, एक्टर्स करके ये एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा, डिस्टिंक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इस फिल्म, जो ये फिल्म है इसकी जो स्टोरी है, ये जब भी किसी एक्टर के पास जाती थी, ये जब भी कोई एक्टर इस ठान लेता था कि इसको वो करना है, इन्हें करना है, उसकी कैसे रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। जी हाँ, सो इस पर ये एपिसोड नंबर 2 है, और आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 1970 का दशक, 1970s के बाद 1979 फाइनली सारा स्ट्रक्चर, प्लॉट, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले सब रेडी हो गई। अब जद्दोजहद चालू होती है एक्टर खोज करने की, एक्टर की खोज की, क्योंकि फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट थी डायरेक्टर के लिए और प्रोडक्शन हाउस के लिए। सो एक्टर भी उनको ऐसा चाहिए था कि जिन्हों जो एक्टर खुद को, अपने आप को इस स्टोरी में अपना 100% दे, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, राइट। सो इस तरीके का एक्टर खोज करने के लिए जो प्रोडक्शन हाउस और जो डायरेक्टर हैं वो चले चलते हैं। उसके बाद दौर चालू हो जाता है ये सब मैनेज होते होते 1982 का। अब समय होता जाता है 1979 से 1982, 3 साल, लगभग 3 साल बीत जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर थे टॉड कैरल, जिसको मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, तो ये जो कैरेक्टर है टॉड कैरल, इनके एक हॉलीवुड में जान पहचान के एक हीरो थे, एक एक्टर थे जो काफ़ी अच्छा काम करते थे हॉलीवुड में, और बेहद ही मतलब एक फेमस टाइप के वो इंसान थे, फेमस एक्टर थे, और वो कॉमेडियन, लगभग उनको कॉमेडियन एक्टर माना जाता था, जो उनका जॉनर था वो कॉमेडियन वाला, वो इमेज जो थी वो कॉमेडियन। तो ये जो एक्टर है इनका नाम है जॉन बलूशी। ये राइटर के जो दोस्त भी थे, और काफ़ी अच्छा नाम भी था इनका, और इसके बाद फिर चालू हो जाती है इस फिल्म का जो नाम है वो रख दिया जाता है अतुक, ATUK। तो फाइनली जो इस फिल्म को एक नाम मिल जाता है, और उसके बाद ये अतुक की जो कहानी, ये जॉन बलूशी को सुनाई गई। तो जब जॉन बलूशी ने इस कहानी को सुना तो उन्हें वो काफ़ी इम्प्रेस लगी, काफ़ी उनको पसंद, उन्होंने कहा कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इसमें है, मतलब ये काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेगी, उनको ये भरोसा था काफ़ी। और ये फिल्म को वो सुनने के बाद, स्क्रिप्ट पूरी सुनने के बाद, इसको वो हाँ कर देते अतुक को। तो जब फाइनली जब अतुक उनको पसंद आ जाती है तो लीड रोल के लिए वो आ जाते हैं, और डिसाइड होता है कि अब ये फ्लोर पे जाएगी, इसका काम शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन, शूटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद कुछ ही महीने बाद, मतलब लगभग 5 मार्च 1982 को, इससे पहले जब बलूशी को, जॉन बलूशी को जब ये कहानी सुनाई गई थी, तब दौर था जनवरी 1982, लगभग 2 महीने पहले उनको ये कहानी सुनाई गई थी, और 2 महीने बाद जो जॉन बोलुशी है वो एक होटल पे रुके हुए थे यूएस में, और शायद कोई उनका कोई प्रोग्राम था, कोई शूटिंग था जो ख़त्म करके या मे बी अटेंड करके वो उस होटल पे जो थे वो अपना लेजर टाइम, अपना आराम आराम करने के लिए वो रुके हुए थे। तो जब जॉन बोलुशी रुके थे तो उसी होटल से उनकी लाश बरामद हुई, डेड बॉडी। जी हाँ, जॉन बोलुशी जो है वो होटल में मृत पाया जाता। और क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है कि आप अगर एक्टर एक फेमस कैरेक्टर है या फिर हीरो है या सितारा है हॉलीवुड का स्पेशली, और आपकी मौत ऐसी ही किसी होटल में हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही ऑब्वियसली। तो इस केस में, जॉन बोलुशी के केस में भी सेम हुआ था। जब इनकी मौत हुई थी तो इनकी उम्र थी 33 साल जब उनकी लाश मिली, तो लोगों को लगा कि ये फाउल प्ले है, किसी ने कुछ इनको दिया है या कुछ किया है इनके साथ में, क्योंकि ऐसे ही कैसे रातों रात एक अचानक एक एक्टर जो है उसकी मौत हो जाती किसी होटल में और कुछ पता नहीं चलता किसी को। तो इस मामले में फाउल प्ले का, और जब ये सिनारियो जब चल रहा था तब केस आ जाता है, मतलब इस सिनारियो में एंट्री हो जाती पुलिस की। तो पुलिस जांच करने लग जाती है इस चीज़ों की कि जॉन बोलुशी के साथ एक्चुअली हुआ क्या, कैसे एक आदमी रहस्यमय तरीके से मृत पाया जाता। तो फाइनली जब उनकी जो डेड बॉडी, उनकी जो लाश है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, और पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है, वो ये निकल करके सामने आती कि ड्रग्स की जो ओवरडोज है उनकी वजह से जॉन बोलुशी की मौत हो गई। तो जब ये जब खुलासा हुआ रिपोर्ट के द्वारा ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इसकी इसकी मौत हो गई जॉन बोलुशी, तो पहले तो मतलब ऑब्वियसली जो कोई ड्रग कंज्यूम करता है वो अपने आप को तो एकदम ओवरडोज या फिर इतना तो उनको पता ही होता है कि उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन जितना भी मैं फॉलो करता हूँ ये सब ड्रग की स्टोरी और जितने भी मैंने देखी है ये सब ऐसे, तो मुझे लगता है कोई एक सर्टन अमाउंट होगा जिससे वो नशा में भी करते होंगे। तो ये यहाँ पर दिलचस्प बात हो जाती है, लोगों में सुगबुगाहट हो जाती है कि यार कैसे कोई ओवर ड्रग्स की ओवर डोज। तो इस जो टोटल ये जो कहानी चल रही है उसके पीछे फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है फाउल प्ले, उनको लगता है कि शायद कोई फाउल प्ले है। अब क्योंकि मीडिया प्रेशर और जो वहाँ के जो पब्लिक है उनका ये मानना था कि नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, आप चेक कीजिए अपने एंड से। तो जब 2 महीने की जब इन्वेस्टिगेशन होती तो पता चलता है कि उस रात जो जॉन बलूची है उनके साथ में एक एक लेडी थी, एल्विन स्मिथ। तो एल्विन स्मिथ ये कबूल करती कि उस रात उन्होंने उनको ड्रग्स का ओवरडोज दिया, मतलब ड्रग्स जो है वो उन्होंने उनको दिया जॉन बलूची को, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये 2 महीने के बाद जब पता चला एल्विन स्मिथ ने अपना जुर्म कबूला, तो एल्विन स्मिथ को इस केस में मेरे ख्याल से 15 महीने की सजा भी हुई, और 15 महीने की सजा होने के बाद में ये सारी चीजें हुई, फिर वही ये सब चला और अतुक का काम वही रह गया। फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो काम धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब यहाँ के जो पहले जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मौत होती पहले एक्टर की जिन्होंने अतुक में काम करने के लिए हामी भरी थी, हाँ किया था। सो बेसिकली यहाँ पर जो जॉन बलुशी है उनकी मौत के बाद अतुक का काम ठहर गया। अब प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर दोनों भी टेंशन में कि अब कैसा होगा इसके बाद, क्योंकि अभी तो चलो अब खैर एक्टर अभी रहे नहीं, तो इसके बाद हम कुछ नया शुरू करते हैं। तो लगभग लगभग जॉन बोलुशी की मौत के 2 या 3 महीने बाद सारा चीज़ ठंडे बस्ते में थी। फिर उन्हें लगा कि नहीं अभी एक हमें एक नया एक्टर ढूंढना चाहिए इसके लिए, तो जद्दोजहद चालू करते वो एक्टर के लिए, सेकंड एक्टर के लिए जो इस फिल्म के लिए जिसका नाम है अतुक। तो वो खोजबीन में लग जाते हैं कि अब ऐसे एक्टर को ढूंढना चाहते हैं कि वो भी लगभग लगभग ऐसे ही हो, मतलब जो इस स्क्रिप्ट को अपनाए और इसमें अपना 100% दे, और उनको अपने इंटरनली उनको ऐसा लगे कि नहीं दैट ही कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो गाइज ये थी जॉन बलुशी की कहानी, और ये था मेरा सेकंड एपिसोड। सो इसके बाद जो एक्टर आते हैं, इसके इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तीसरे एपिसोड में हमारे, क्योंकि अभी और भी एपिसोड आना बाकी और ये कहानी जैसे जैसे चलती जाएगी आपको सारे कैरेक्टर जो है वो आपको समझ में आते जाएंगे। सो मैं यहाँ पर इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात ये है ना कि आपने इनकी जो जो एक्टर है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनकी मौतें और इनका जो समय है, जो एक टाइम है, वो आपको एक जहन में लेते हुए चलना। क्योंकि देखिए फिल्म चालू तो वैसा इसका जो प्लॉट रखा गया था 1979 में ये फिल्म लिख कर स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह सब तैयार हुई थी। 1982 में ऑफिशियली इस स्क्रिप्ट में कुछ 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 चीजें जो थी वो पॉजिटिव चली गई, आई मीन द सेंस कुछ इंक्रीमेंट हुआ इस स्क्रिप्ट में, कामों में, कि चाहे वो एक्टर को ढूंढना हो, चाहे वो उसे साइन करना, सुनाना स्क्रिप्ट, फिल्म का नाम, ये सब। तो बेसिकली कुछ जो इसमें बढ़त जो मिली है कामों में, जो स्क्रिप्ट में, वो 1982 से मिली, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद जब उनकी मौत हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टर आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, काफी दिलचस्प। दरअसल ये जो एपिसोड 3 अपना होने वाला है, इसमें जो एक्टर हैं, जो ये जो मुझे पर्सनली जो लगता है कि ये जो टोटल जो अतुल अतुल की जो ये है स्टोरी है, इसमें जितने भी एक्टर हैं, इसमें इसमें जो ये सेकंड जो एक्टर है उनकी मुझे डेथ पे काफी ज्यादा सस्पिशियस होता हूँ मैं पर्सनली। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मैं काफी दिन, मतलब काफी काफी टाइम ये सोचता रहा कि यार इस बंदे के साथ ऐसा क्या हो गया, मतलब ये बंदे ने ऐसा क्यों किया, या फिर इसके साथ ऐसा कैसे क्या हो गया। और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ उस जमाने में, काफी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया, और इनके जो 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 डेथ से रिलेटेड है कि जो भी चीज हुई, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी डेथ हुई थी। जो सेकंड एक्टर हैं जो हमारे इस पे आने वाले हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा वेट कीजिए थर्ड एपिसोड का। आई होप कि आपको पिछले दोनों एपिसोड पसंद आए होंगे। थर्ड एपिसोड में जाने के लिए आप सुनने के लिए आप इंतजार कीजिए, और मैं बिल्कुल आपको तीसरे एपिसोड में ये चीज़ बताऊंगा कि, और आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों ये जो सेकंड एक्टर है उनके उनके लिए मेरा जो मन है वो ज्यादा, या फिर मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा सस्पिशियसली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और बने रहिए मेरे साथ द कर्स ऑफ अतुक जो ये कहानी है, इसकी जो तीसरा एपिसोड है वो आपको सामने जल्द लेके आ जाऊँ। तब तक के लिए आप मेरे मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपका कोई कुछ भी एक आपका जो फीडबैक है आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कल मेरा पहला एपिसोड था ऑफिशियली किसी स्ट्रीमिंग लाइन पे, एज ऑफिशियल पॉडकास्ट मैंने आई मीन रिकॉर्ड किया हुआ था, और ये मेरा सेकेंड एपिसोड है। तो कुछ भी यहाँ पर आपको लगता है कि आपके आइडियाज या आपके कि मुझे ये चेंज करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे कुछ बताना चाहिए, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, एंड बाय।